आपने जो फिक्र दी 128 बिलियन, उससे मुझे फौरन ख्याल आया कि हमारे रिजर्व्स तो 8 बिलियन है, तो अगर हम 128 को 8 से डिवाइड करें तो मेरा ख्याल है ये कितना आ जाता है, तकरीबन 16 गुना आ जाता है
जी।
मैं अभी इंडिया का देख रहा था, इंडिया का फॉरेन डेट जो है वो 653 बिलियन है, इंडिया का जो रिजर्व्स है वो 600 बिलियन है
जी।
तो इंडिया का जो फॉरेन डेट है वो उनके रिजर्व्स के बराबर है
जी,
हमारा जो फॉरेन डेट है वो हमारे रिजर्व से 16 गुना ज्यादा है
जी जी।
अब आप मुझे बताइए क्या इंडिया क्यों नहीं ऐसे फंसा, हम क्यों फंसे?
मुझे कहीं भी थोड़ा सा भी ये नहीं नजर आता पावर सर्कल्स में कि यार वी नीड टू चेंज द कोर्स, वो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है।
वेलकम, यू आर लिसनिंग टू द बाइटकास्ट बाय पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स PIDE, द प्रीमियर थिंक टैंक ऑफ पाकिस्तान इन रिसर्च, पब्लिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक्स।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एक और PIDE की, जो हम आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस देते हैं, पाकिस्तान की मईशत के बारे में हम बात करते हैं, ये समझाने के लिए कि मईशत के जो बहुत बड़े बड़े इशूज़ हैं जो टॉक शोज़ में नहीं आते, वहाँ तो एक ही बात जो रट लगाई होती है, टैक्स बढ़ा दो, उसके आगे क्या चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें बात करने की ज़रूरत है और हम बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लेके आते हैं। उम्मीद यह है कि आप सुन रहे होंगे और ये क्या कहते हैं सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, और आप गौर करेंगे कि मईशत कोई एक चीज़ नहीं, मईशत में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इसीलिए हम पाइड आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। आज हम एक बहुत बड़े मसले पर बात करेंगे जिस पर कोई बात नहीं करता, सब कहते हैं टैक्स और लगाओ, सब कहते हैं कि हुकूमत के खर्चे बढ़ाओ, फ्लाईओवर्स बनाओ, ये बनाओ, ये भूल जाते हैं कि ये कर्जा लेके हम सब कुछ करते हैं, या जिसको हम कहते हैं एड, एक चीज़ है जिसको हम एड कहते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शाहिद महमूद, जिन्होंने माशाल्लाह इस पर बहुत अच्छा एक पेपर लिखा है, किताब भी बल्कि लिखी है, अभी पाइड का एड मोनोग्राफ इन्होंने लिखा है, एड के ऊपर इन्होंने काम किया, एड क्या चीज़ होती है, एड से हम करते क्या हैं, ये खुदा के वास्ते हमारे एंकर्स को भी आप सबको चाहिए सोचें कि एड क्या होता है। तो डॉक्टर साहब जरा प्लीज़ जल्दी से बताइए ये एड होता क्या है, ये वाकई हमारी इमदाद करते हैं, ये वाकई हमारे हमदर्द हैं, या कि इसमें कुछ और मसला है?
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुख्तसर ये कि पाकिस्तान जब से बना है 1947 से आज तक हम लोग बाहर से हमें इमदाद आ रही है, मैं तो इसे भीख कहूँगा, लोग इसे इमदाद कहते हैं, और इमदाद की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, कोई इसको दे काउच इट इन डिफरेंट टर्म्स, कोई कहता है ये ओडा है, कोई कहता है ये कर्ज है, कोई कहता है बट वट एवर इट इज़, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग जो है इस भीख के आदि हो चुके हैं। मज़े की बात यह है कि ना आज तक इधर किसी ने इस पर सवाल उठाया, ना किसी ने रिसर्च की है कि इससे आखिर हम कर क्या रहे हैं। जो मेरी रिसर्च है, जो मेरी तहकीक है, उसके मुताबिक आज तक हमने पाकिस्तान 1947 से, कम अज़ कम 1950 से लेके जितना भी मैंने नंबर्स निकाले हैं, 1950 से लेके अब तक हम कमिटमेंट्स $200 बिलियन से ज़्यादा की,
$200 बिलियन
से ज़्यादा की कमिटमेंट्स पाकिस्तान को एड की कि हम इमदाद देंगे मुख्तलिफ सूरतों में, और उसमें से इंटरेस्टिंग बात यह है कि तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक कम अज़ कम 155 से $157 बिलियन पाकिस्तान में आ चुके हैं और खर्च हो चुके हैं। अब मज़े की बात यह है, या मैं इसको मज़े की बात कह ले, या मैं कहूँगा कि ये अफसोस की बात है, या आपको ये नंबर ये कहीं भी नहीं मिलेंगे, किसी एक इदारे के पास नहीं है।
$155 बिलियन हम खर्च चुके हैं
जी।
अच्छा, ये जो खर्च चुके हैं इसमें से कितनी इमदाद है और कितने लोन्स हैं
इसमें से जी? जो अभी तक अगर आप 1950 से लेके अब तक का सारे नंबर्स उठाए, तो इसमें से आप ज़्यादातर जो है 21वीं सदी में, इसमें से मुश्किल से 21वीं सदी में तो अब बिल्कुल ही 3% जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ग्रांट्स आएंगी, 3 से 4%, बाकी सारे जो है वो कर्जा है।
तो अब जो भी हम पैसे ले रहे हैं बाहर से, चाहे उसको एड कहें, चाहे उसको इमदाद कहें, चाहे कुछ कहें, वो बेसिकली कर्जे होते हैं,
वो बेसिकली बुनियादी तौर पर कर्जे हैं। अब मज़े की बात आपको ये बताऊँ मैं कि, और दोबारा बात वहीं पर आती है कि हम लोग तहकीक के शौकीन नहीं हैं, हम लोग सवाल नहीं उठाते। जो हम ये कहते हैं कि जी ये मुफ्ते की ग्रांट्स आ रही हैं, कि जी वो ग्रांट्स तो खैर हमें वापस नहीं करनी पड़ती, लेकिन इसमें यह है कि आपके लिए वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ बनाती है, यानी आपको आपके लिए वो मजीद मसाइल बनाती है फ्यूचर में। वो कैसे? क्योंकि जब वो ग्रांट आपके खर्च करते हैं तो उसके साथ और भी चीज़ें आती हैं, बाहर से कंसल्टेंट्स आते हैं, बाहर से एडवाइस आती है, उसमें फिर उसमें ये भी होता है कि आपको बाहर से चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, सर्विसेज खरीदनी पड़ती हैं, गुड्स खरीदनी पड़ती हैं। डॉक्टर महबूबुल हक का एक पेपर है, उन्होंने 60 की दहाई के आखिर में लिखा था, बल्कि 70 की दहाई के शुरू में आया था। उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया था कि पाकिस्तान को जितने हम प्रोजेक्ट्स की एड मिलती है वो ऐसा नहीं है कि वो कोई मुफ्त की है, क्योंकि उसकी वजह से हमें जो सामान खरीदना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी कीमत मार्केट के मुकाबले 174% ज़्यादा है।
174%
ज़्यादा है,
यानी कि वो आपको पैसे देते हैं और कहते हैं कि ये पैसे हमारी तरफ से चीज़ें खरीदनी है,
हमारी तरफ से चीज़ें,
ठीक है, तो खरीदनी जब हमारी तरफ से है तो आपको जो उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह और चीज़ें लेनी वो भी हमारी तरफ से ही आएंगे,
बिल्कुल,
तो आप लॉन्ग टर्म भी फंस जाते हैं क्योंकि उसके अंदर,
बिल्कुल। अब मैं आपको इसकी एक दो मिसालें देता हूँ। मिसाल के तौर पर हम लोग असला काफ़ी खरीदते हैं, अब F-16 हो गए, वो हमारी एयरफोर्स जो है 1980 से इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वो सिर्फ दवा के लिए नहीं इस्तेमाल होते, उसके आप देखें जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह सब कुछ आते हैं वो अभी तक हमें अमेरिका से खरीदने पड़ते हैं। तो जितनी कीमत,
और वो फिर हम पैसे दे के खरीदते
हैं, वो कोई मुफ्ते की चीज़ नहीं है, लोगों को ये समझ नहीं है। फिर इसके अलावा आप देख लें कि जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, हम लोगों को बड़ा शौक है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, हम छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते, उस पर जितने हम पैसे लेते हैं, लोन्स लेते हैं, उसकी वजह से हमें जो आगे 5 साल में, आने वाले 5-10 सालों में जो लाइबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं, हमें पैसे देने पड़ते हैं, या उसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज हमें के जी बाहर से हमें ख़रीदनी पड़ेंगी, उसके अलावा हमारे पास अपना तो कुछ है नहीं, तो ये लोग जो है इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते। अच्छा, अब 1980-81 का अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें, उस वक्त हमारा जो बैरूनी कर्जा था डॉलर का, वो था $9 बिलियन, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ये खामखा हम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लादे जाते हैं, जो कि शायद जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, इसकी वजह से हमारा कर्जा इतना बढ़ गया। देखें, ये 1981-81 की बात है, आज है हम 2023-24 में, और वो अब हमारा बैरूनी कर्जा बढ़ के $129-130 बिलियन तक पहुंच,
$130 बिलियन तक कर्जा है
जी, बैरूनी कर्जा है। लेकिन कोई मंसूबा नहीं, कोई सोच नहीं, कोई हिकमत अमली नहीं कि यार इसका हमने करना क्या है कि हम लोग हर साल $20-24 बिलियन कर्जे के लेते जा रहे हैं, इसका आखिर हम करेंगे क्या और इसको हमने इस्तेमाल क्या करना है, ना कोई सोच है ना इस पर।
शायद सब ये जो कर्जे हैं ये हम किस तरह लेते हैं, इसकी क्या प्रोसेस है, ये इसको कोई पार्लियामेंट नहीं देखता, इसको कोई इस पर तशवीश नहीं होती, इस पर कोई वो नहीं होता, क्या कहते हैं, इवेल्यूएशन होती
नहीं जी? इवेल्यूएशन तो बिल्कुल नहीं होती। अगर आप प्लानिंग कमीशन के अपने काम से मिले तो वो खुद इतराफ़ करेंगे कि हमारा जो इवेल्यूएशन का प्रोसेस है वो तो बिल्कुल डेड है, ख़त्म है, उसमें हम लोग कोई इवेल्यूएशन नहीं करते कि ये जो हमने इतने प्रोजेक्ट्स चलाए हैं पाकिस्तान में। मैंने अंदाज़ा लगाया कि पिछले 2 दहाइयों में, पिछले 20 सालों में औसतन कम अज़ कम अगर आप 2008-09 से ले लें, तो औसतन पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 1250 प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। आज तक किसी को नहीं पता कि आखिर ये जो चलते इतने अरसे से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इनका आउटकम क्या है, इसकी वजह से कोई तब्दीली आई है, कोई अच्छाई आई है?
तो 1250 आप कह रहे हैं ये सब बाहर से फंडेड है, हमारे नहीं, बाहर से फंडेड,
बाहर से फंडेड,
और ये 1250 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो इतने प्रोजेक्ट तो मेरा ख्याल देखना भी बड़ा मुश्किल, तो उनको कौन इवेल्यूएट कर रहा है, कौन देख रहा है?
कोई भी इवेल्यूएट नहीं कर रहा। मुख्तसर आपको मैं ये बताता हूँ कि डोनर आता है, उसकी बड़ी पहुँच है, इतनी मेरी और आपकी और हम सब की तहकीकारों की जो पाकिस्तान के हैं उनकी पहुंच नहीं है। वो आता है, वो एक ऑफिस में एक सेक्रेटरी से मिलता है, या जॉइंट सेक्रेटरी से, या एडिशनल सेक्रेटरी से, या स्पेशल सेक्रेटरी से मिलेगा, वो बैठेंगे आपस में, कुछ डिस्कशन होगी जो कि मुझे और आपको नहीं पता कि क्या होना, ना पाकिस्तान के लोगों को पता है। हमें इतना ये पता चलेगा कि 2-3 महीने बाद एक नए कर्जे पे दस्तखत हो रहे होंगे कि जी हम आपको एड दे रहे हैं और ये इस प्रोजेक्ट के लिए। कोई उसकी आपको डिटेल अवेलेबल नहीं है, उसकी तफसीलात किसी को नहीं पता कि क्यों ले रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट है, किसने इसकी इवेल्यूएशन की है, हमें ये प्रोजेक्ट आया चाहिए भी कि नहीं चाहिए। मैंने अपनी स्टडी में, मैंने अपनी तहकीक में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स के नाम दिए जिनकी सिरे से कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन वो
एक एग्जाम्पल तो दें ऐसा कोई।
अब हुकूमत के अपना जो ढांचा है, इंतज़ामी ढांचा, इसमें बहुत से ऐसे इदारे हैं जो कि हमने डोनर्स के कहने पे बनाए हैं, और उनके कहने पे हमने कहा था कि, उन्होंने कहा था कि आप इस तरह करें तो आपको कर्जे मिलेंगे मजीद, और हमने वो किया। मैं एक बड़ी मिसाल दे देता हूँ, वाडा की जो बाइफर्केशन की गई, उसमें हमने जो जेनकोज बना दिए, उसमें हमने डिस्कोज बना दी, ये वर्ल्ड बैंक के कहने पे हुआ था। IPPs जो है वो वर्ल्ड बैंक के कहने पे आए, ठीक है जी। इस तरह हमने बहुत से इदारे, मिसाल के तौर पर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वगैरह, ये सारे हमने डोनर्स के कहने पे वो किए, उन्होंने उसके लिए बाकायदा पैसे भी हमें दिए थे। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमारी अपनी सोच का है, और जब ये कायम हो रहे थे, जब ये हो रहे थे,
तो जो उन्होंने पैसे दिए वो ग्रांट मनी थी, लोन की थी,
उसमें लोन्स भी थे, उसमें ग्रांट्स भी थी। अच्छा, ग्रांट जो है वो बहुत छोटा,
बहुत छोटी होती, ज्यादा लोन होती,
ज्यादा लोन।
और लोन के अंदर वो कहते हैं कि आपको हम बहुत कंसेशनल टर्म्स में दे रहे हैं, वो कहते हैं इंटरेस्ट रेट बहुत छोटा जो हम लोन दे रहे हैं दुनिया का मुकाबले में, क्या बात सही है?
बात अगर आप सिर्फ नॉमिनल टर्म लें ना कि जी उसकी परसेंटेज कितनी है, पहले तो ये है कि वो आम तफसीलात वो भी अवेलेबल नहीं है, किसी को नहीं पता। लेकिन अगर आप चलें ये कहने कि जी उन्होंने हमें एक लोन दिया, कर्जा दिया 1% पे 2% पे, लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं पता होती कि फिर उस 1% 2% उस कर्जे से हमने बाहर से कितनी चीज़ें खरीदनी है, ठीक है, उसकी वजह से हमारे मुस्तकबिल में हमें क्या परेशानियाँ, क्या लाइबिलिटीज आएंगी। जैसे कि मैंने कहा कि ये तहकीक किसी ने की नहीं है, क्योंकि हम आधी
उसके अंदर टेक्निकल असिस्टेंस भी शामिल होती है, तो टेक्निकल असिस्टेंस क्या चीज़ होती है?
टेक्निकल असिस्टेंस ये होती है कि जी वो आपको कहते हैं कि आपके पास इतनी तकनीकी सलाहियत है नहीं कि आप एक चीज़ जो है उसको परस्यू कर सके। मिसाल के तौर पर आपको वो कहेंगे कि जी आपने इतना बड़ा डैम अगर बनाना है तो आपके पास कोई तकनीकी सलाहियत है नहीं, तो ठहर जाए हम आपको तकनीकी सलाहियत देते हैं। और ये सिर्फ बड़े डैम्स की बात नहीं है, मैं एक प्रोजेक्ट में काम करता था, मुझे याद है ये 2007-08 की बात है, तो उसमें एक प्रोजेक्ट था छोटा सा, उन्होंने कहा था कि जी आप अपने इदारे में, एक इदारे में, सरकारी इदारे में मैं काम करता हूँ, उन्होंने कहा जी आपके पास तकनीकी सलाहियत नहीं है, आप ऐसा करें हमसे एक कर्जा लें। उनका एक कंसल्टेंट था, वो आता था साल में 2 दफ़ा बिजनेस क्लास में, वो 1-2 दिन यहाँ पर ठहरता था अच्छे एक होटल में, वापस चला जाता था, कर्जा खत्म हो गया, पैसे ले लिए, बस वो जितने को हायर किया तो उन्हें फारिग कर दिया। तो ये पाकिस्तान में एक आम तरीका कार है, दे ट्राई टू इंस्टिल इन यू, एंड अनफॉर्चुनेट थिंग इज, अफसोस की बात यह है कि हम लोग जल्दी से उसको बाय कर लेते हैं। वो ये कि आपके अंदर कोई खुद इतनी सलाहियत नहीं है कि आप एक काम कर सकें, तो इसलिए ठहर जाए हम आप पे कंसल्टेंट्स जो हैं और अपनी एडवाइजर जो हैं वो डंप करते हैं, आप उनका सहारा लें, वो आएंगे आपको बताएंगे कि काम किस तरह करना है।
और उसमें अगर कोई फॉर एग्जांपल जो एक चीज़ होती है जो मैं अक्सर देखता हूँ, बताइए कंफर्म करें ठीक है कि नहीं ठीक, वो अक्सर कहते हैं कि वहाँ ये हुआ था तो यहाँ भी कर लो। तो अगर पूरी दुनिया में एक ही चीज़, जैसे अभी हमारे पास एक स्पीकर आ रहा है लैंड प्रिचर्ट अगले 2-3 दिन में, वो एक बात कहता है बड़ी मज़ेदार, कहता है आइसोमॉर्फिक मिमिक्री।
जी
बताइए ये क्या होता है?
आइसोमॉर्फिक मिमिक्री बुनियादी तौर पर आप नकल कर रहे हैं, नकल ये कर रहे हैं कि अच्छा यार ठहर जो आपके इधर पता है अमेरिका में हमने ये किया, नॉर्वे में ये किया, बरतानिया में ये किया, तो चले पाकिस्तान में भी शुरू कर दें। पाकिस्तान में शुरू करने से पहले बुनियादी एक असूल ये होता है कि आपने किसी चीज़ को अगर एक जगह पे शुरू करना है तो पहले तो आपके पास तहकीक होने, आपके पास नंबर, आपके पास इदाद व शुमार होने चाहिए कि यार क्या ये जो उन्होंने वहाँ पर लागू कर रहे हैं क्या इस ये इधर कामयाब होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये आप और मैं नहीं जानते या यहाँ के अवाम नहीं जानते, ये डिसाइड होता है सरकार के इदारों में, ये हॉल्स में, पावर हॉल्स में वो होता है कि यार ठहर जाओ, अच्छा एक पॉलिसी ऊपर से आती है। मैं एक और पॉलिसी का नाम बता दूँ, सोशल सेफ्टी नेट। पिछले 10-20 सालों में ये एक हॉट केक है कि वो आ गया कि जी दुनिया में सारे वो देखें मेक्सिको में बड़ा कामयाब हुआ है तो इधर भी वो कर दें, तो उसके तहत हम लोगों ने BISP एक वो कायम हुआ है। अच्छा, अब इससे पहले पाकिस्तान में आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि कितना बड़ा वेलफेयर सिस्टम है यहाँ पे, लेकिन हमें ये बावर करवाया गया कि यहाँ पे तो कोई वेलफेयर सिस्टम है ही नहीं, सिफर है। अब वो प्रोग्राम 2008 से चल रहा है, उस पर नेशनल टैक्स पेयर का तकरीबन 1.5 खरब रुपए ट्रिलियन रुपए टैक्स पेयर के वो खर्च हो चुके हैं, लेकिन आप देखेंगे कि पावर्टी के नंबर जो हैं वो मजीद वो गिर गए हैं, वो ख़राब हो गए हैं, ना उससे कोई और इम्प्रूवमेंट आई है। सो वी आर कैरिंग ऑन विद दैट थिंग। उसमें एक छोटे से उन्होंने एक थोड़ी सी वो रखी हुई थी कि जी ये आप ले लें, ग्रांट ले लें, वो भी बहुत ही 1% कंपोनेंट है जो उसका खर्चा है, उसमें मजीद 4% जो है लोन्स है। तो देखिए हमारी कहने का मकसद ये है कि हमारी कोई सोच नहीं है इसमें। एक इंतहाई ज़रूरी बात मैंने अपनी जो तहकीक में जो साबित की है वो एक तो ये होता है ना कि लोग अक्सर आप हमारे इकोनॉमिक्स में ये होता है कि जी एक उन्होंने कहीं से एक सेक्टर के नंबर उठा लिए और उस पर रिग्रेशन चला दी और कहा कि जी ये अच्छा है ये ठीक है नहीं। ये जो गैर मुल्की इमदाद होती है अगर अमेरिका देता है, बरतानिया देता है, कोई भी देता है, ये ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट अ चैरिटी, ये वो बगैर सोचे समझे नहीं देते। 50 की दहाई में उधर बड़ी बहस हुई थी इस चीज़ में, तो आखिर में एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट आई थी एक MIT की और 2 बड़े नामी ग्रामी इकोनॉमिस्ट थे, इक्तिसादी माहिर थे, वॉल्ट रॉस्टाव और माइक मिलिकन, उनकी एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल रिपोर्ट थी, उसको मैंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कुछ क्राइटेरिया उन्होंने रखे हुए थे कि यार ये क्वालिफिकेशन है, کہ اگر آپ نے غیر ملکی امداد ایک ترقی پذیر ممالک کو دینی ہے تو پھر اس کو پیمانہ اس کو یہ گیج کرنے کا کہ یار کیا یہ ان کے لیے اچھی ہے یا بری ہے. ان نے چار پانچ کرائٹیرین رکھے جو کہ میں نے اپنی تحقیق میں استعمال کیا. مثال کے طور پہ انہوں نے ایک یہ رکھا کہ جب ان کو غیر ملکی امداد دیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی سیونگ ریٹ جو ہے مارجنل سیونگ ریٹ وہ بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ ہے کہ ان کے ڈیولپمنٹ کے پروگرامز اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ اس سے واقعی ہیومن کیپٹل یا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہو یا جی ڈی پی ہو وہ کنسسٹنٹلی امپروو کرتے جائیں گے. لیکن پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں ایسے کچھ بھی نہیں. اب مثال کے طور پہ دیکھیں $155 بلین یہ میں آپ کو صرف وہ بتا رہا ہوں جو کہ بکس میں کسی نہ کسی طرح آئی ہیں. جو اس کے علاوہ پیسے ملے ہیں وہ کسی کو نہیں پتا آف دا بکس جتنے آئے ہیں. اب سن میں نے اندازہ لگایا اپنی تحقیق میں کہ سن 2002 سے لے کے اب تک صرف ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر کو $12 بلین ملے ہیں آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنس میں. لیکن آپ ہیلتھ کے اور ایجوکیشن کے اسٹیٹسٹکس یا نمبر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں تو تنزلی آ رہی ہے, اس میں تو بہتری نہیں آ رہی. تو پھر آخر یہ $12 بلین ہم نے کس چیز پہ خرچ کی, اتنا لون لے رہے ہیں, اتنے پروجیکٹس چلا رہے ہیں. تو یہ وہ سوال ہیں جو کہ ہمیں پوچھنے چاہیے لیکن ہم پوچھتے ہیں.
ایک اور چیز جو مجھے, میں کھیتی باڑی والا آدمی جو مجھے پتا ہے کھیتی باڑی والے لوگوں سے بات کر کے کہ مولی اگر ایک جگہ اگتی ہے تو ضروری سب جگہ اگ جائے گی. وہ کہتا ہے یار یہ یہاں نہیں اگ سکتی وہاں. جیسے کہ آپ دیکھیں کے پی کے میں ٹوبیکو اگتا ہے جی, تمباکو جی. تمباکو پنجاب میں نہیں ہوتا یا وہاں نیچے ساؤتھ میں نہیں ہوتا. تو اپنی بھی چاول جو ہے وہ صرف اگتا ہے ایک سرٹن ایریا, فیصل آباد وغیرہ کے ایریا میں, وہ آگے نہیں جاتا ادھر ادھر. تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہر چیز اٹھا کے کاپی کر لو, تو کیا کاپینگ صرف کافی ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یو ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل, یو ہیو ٹو کاپی ایوری تھنگ. تو ہم کاپی کرنے سے بنے کیوں نہیں ابھی تک جو ہم اتنا کاپی کرتے رہے, خاص طور پہ کنسلٹنٹس کی ایڈوائس لے کے, اور اپنی ہم نے کیپیسٹی جو ہے جو کہتے ہیں کیپیسٹی بلڈنگ کریں. یہ بھی بتا دیں کیپیسٹی بلڈنگ کی اور طرح ہماری کیپیسٹی کیوں نہیں بنتی کبھی.
یہ کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے یہ ایک بڑا ایک ایسی وہ ٹرم ہے جو کہ بہت زیادہ سننے میں آتی ہے. آپ جدھر جائیں وہ کہتے ہیں, ابھی بھی آپ حکومت کے اداروں کے زیادہ تر جن نے لونز لیے ہوئے ہیں آپ میں ان کو سے تقریباً 50-60% وہ کہیں گے جی ہم کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں. اب حکومت کا ایک ادارہ جو کہ ٹیکس اکٹھا کرتا ہے اس نے کوئی ابھی تک جو ہے $400 بلین کئی 2004-05 میں لیے تھے کہ جی ہم نے کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے. پھر 2019 میں $400 بلین لیے, اب تقریباً $300 بلین اور لے رہے ہیں کہ جی ہم نے کیپیسٹی. تو سوال یہ ہے کہ بھائی کون سی کیپیسٹی آپ بلڈ کر رہے ہیں؟ اور آپ جس سرکاری ادارے میں چلے جائیں وہ کہتے ہیں جی کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں. تو یہ تو 50-60 سال سے, میں بھی وہ جو میم نے تحقیق کی ہے 50-60 سال سے تو یار کیپیسٹی بلڈنگ کے نام پہ پیسے آ رہے ہیں. تو آخر آپ کی کیپیسٹی کیا ہے؟ اچھا اب مثال ایک لے لیتے ہیں واپڈا کی. ٹھیک ہے جی. اب یہ واپڈا کا خصوصی طور پہ یہ کام تھا کہ یہ جو واٹر ریسورسز ہیں ان کو دیکھیں اور یہ ڈیمز وغیرہ کا وقت. اچھا اینڈ دے ڈڈ اٹ بیک دیئر. جب منگلا ڈیم بنایا, تربیلا ڈیم بنایا, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ نے اتنے بڑے کارنامے, ٹھیک ہے وہ بھی فورن ایڈ, اس میں فورن ایکسپرٹیز شامل تھی, بٹ یو شوڈ ہیو لرن سم تھنگ. 50-60 کی دہائی میں آپ نے یہ کام کیے, اب آپ کو اتنا ایکسپرٹ ہونا چاہیے تھا اس چیز میں کہ آپ کی سروسز جو ہیں اور ممالک ہائر کرتے,
کہیں اور جا کے بناتے.
اور لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کے پاس تو اتنی ایکسپرٹیز ہے, آپ آئیں ہمارے پاس. لیکن ابھی بھی آپ جتنے بھی پاکستان کے ہائیڈرو پاور کے بڑے منصوبے دیکھ لیں, ہمیں باہر سے ایکسپرٹس بلوانے پڑتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے. تو بھائی آخر آپ کے پاس کیپیسٹی کیوں نہیں ہے؟
اور یہ ایڈ پہ جو پیسے آتے ہیں اس پہ بہت سارے ہمارے بیوروکریٹس باہر پڑھنے بھی جاتے ہیں, اور ماشاء اللہ ہارورڈ بھی جاتے ہیں, کیمبرج بھی جاتے ہیں, ایل ایس سی بھی جاتے ہیں, سب جگہ جاتے ہیں, بڑے ماشاء اللہ ڈگریاں بھی بڑی اچھی ہیں, پھر بھی ہماری کیپیسٹی نہیں بنتی. پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ لوگ ڈگریاں بھی لے لیتے ہیں, پھر یہ واپس آ کے جا کے ان لینڈرز کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں, پھر واپس سیکرٹری لگ جاتے ہیں, پھر جا کے کام کرتے ہیں لینڈرز کے ساتھ ریٹائرمنٹ کے بعد. کیا یہ بھی صحیح ہے؟ یہ
تو میں ذاتی طور پہ اس کو میں کہوں گا کہ یہ سراسر غلط ہے. ہم ایک لفظ اصطلاح استعمال کرتے ہیں نا, کانفلکٹ آف انٹرسٹ. ٹھیک, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ابھی ایک سیکٹری کام کر رہا ہے, وہ یا تو ریٹائر ہوگا یا بیچ میں چھٹی لے کے وہ چلا جائے گا, وہ کہے گا کہ جی میں ایک بڑا ڈونر ہے اس کے ساتھ کام شروع کر دے گا. بھائی کیوں, کیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ بیکاز اٹس دا سیم سیکٹری جو کہ لون کے معاہدے پہ دستخط کرے گا. تو یہاں پہ تو آپ کے سیدھا سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا. باقی دوسرا یہ ہے کہ ابھی آپ تحقیق کے دوران میں نے بڑی کوشش کی, میں نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ساروں میں نے کہا یار کوئی مجھے نمبر دے دو کہ آپ کے کتنے افسران سال میں جو ہے ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں, اور پھر اس ٹریننگ کا بنا کیا نا. مطلب آپ نے شاید کوئی پہلے تو وہ نمبرز آپ کو دیتے نہیں, پھر میں نے دیکھا کہ یار کوئی ویلیویشن ہوگی کہ اتنا انہوں نے ٹریننگ کی ہے, کوئی پتہ لگ جائے گا کہ یار کہاں پہ انہوں نے वो भी नहीं है. अक्सर ऐसा होता है एज फार एज आई एम कंसर्न, जो मेरे नॉलेज में आए वो जाके जो है सैर कर आते हैं, ठीक है जी. और सैर किस लिए करते हैं, क्योंकि डोनर आके उनको कहते हैं कि यार अगर आप ये दस्तखत कर लो, इनके आपस में बड़ी वो एक अंग्रेजी में एक वो है ना कि यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स, तो वो लोन पे दस्तखत करने का उसमें ये होता है कि ये अपने लिए रास्ता निकाल लेते हैं कि अच्छा यार चलो लोन पे तो हम दस्तखत करवा लेंगे लेकिन हमारे लिए इसमें क्या है. तो वो कहते हैं कि जी आपको हम घुमा फिरा देंगे, सैर करवा देंगे. तो मैं और आप जो है हम तो स्विट्जरलैंड की सैर नहीं कर सकते, ना यूएस की ना मुफ्ते की और वो भी, लेकिन वो कर देते हैं. तो ये दिस इज बेसिकली वक्त का, मैं जो कहूँगा मैं कहूँगा वक्त का ज़िया है, सलाहियत का ज़िया है, पैसों का ज़िया है, लेकिन यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं.
अच्छा एक चीज़ बताइए, हमारे यहाँ इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, इसका माशाल्लाह एक पूरी डिवीज़न हमने बनाई है, पूरा एक इदारा है जो इनकी देखभाल करता है, देखभाल तो नहीं गलत बात है सॉरी, कि इनको मॉनिटर करता है, इनसे निगोशिएट करता है, सब उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो यही है ना कि वो निगोशिएट करेगा, इनसे माहदे करेगा वगैरह वगैरह. उनसे डेटा मिल जाता है क्या, वो इस चीज़ पे ऑन टॉप ऑफ देयर गेम है, वो समझ रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. तो इसके बारे में दूसरी चीज़ अगर हम इसको सोचें एक्टर्स के हिसाब से देखें, इसमें एक्टर्स कौन है, एक तो हमारी पब्लिक है जिसको बेचारी को पता ही कुछ नहीं चलता, जिसके लिए नाम पे एड ली जाती है, लोन्स लिए जाते हैं,
बिल्कुल.
फिर एक ब्यूरोक्रेट्स हैं जो जाके उनसे बात करते हैं, फिर हमारे पॉलिटिशियंस हैं, फिर हमारे जो एड के कंसल्टेंट्स हैं बहुत सारे, उनकी तो फौज है पूरी
जिससे
बहुत ज़्यादा, और फिर ये देखें कि उनके कितने कंसल्टेंट्स हर रोज़ सरीना में बैठे होते हैं, ठीक है. फिर वो कंसल्टेंट्स कौन हैं, उनके अपने बंदे हैं, या एक चौथी चीज़ है जो मुझे जो बड़ी छुपी हुई चीज़ है वो नज़र आ जाती है, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स. ये भी ज़रा बता दें ये एक्टर्स कौन हैं और इनके क्या रोल्स हैं.
ये डिफरेंट, जैसा कि आपने तीन चार के तो नाम ले लिए, ये डिफरेंट एक्टर्स हैं और इनका पूरा एक नेटवर्क है, और ये नेटवर्क कोई अभी नहीं बना, ये कोई तीन चार जो दहाइयाँ हैं 30-40 years back 50 years, इनका आपस में बड़ा मजबूत और लिंक होता है. एंड देयर इज़ अ प्रोसेस, ये एक पूरा एक प्रोसेस होता है कि वो किस तरह इस चीज़ को मतलब आपके कान तक एक चीज़ पहुँचाएंगे कि अच्छा यार देखो इतने पैसे अवेलेबल हैं, क्या ख्याल है एक प्रोजेक्ट शुरू करें. मैं आपको एक मुख्तसर वो बता रहा हूँ. अच्छा वो फिर उनको कौन पुश करता है कि इतने पैसे हैं, ये एक अलग कहानी है कि यार ये पैसे खर्च करने के लिए पड़े हुए हैं. फिर वो इधर तक अपने डोमेस्टिक एक्टर तक एक बात पहुंचाते हैं, फिर उनके साथ ही दो होते हैं. अब मिसाल के तौर पे मैंने जब USAID की मैं स्टडी कर रहा था उसमें मैंने कम से कम 70 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन निकाली हैं, कुछ डोमेस्टिक और कुछ फॉरन, जो कि USAID के जो पैसे आ रहे थे इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, वो उसका फ़ायदा उठा रहे थे, वो उनके ज़रिए आते हैं, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं आ रहे, उनके ज़रिए आते हैं. फिर देखें आप ये बड़े बड़े डोनर्स जो हैं, इवन छोटे जो डोनर्स हैं, मैंने बड़ी कोशिश की और मैंने EAD भी किया. EAD वाले अफसोस की बात है, हमने बड़ी कोशिश की लेकिन वो डेटा आपसे शेयर नहीं करेंगे. उनकी एक बुकलेट होती है, वो कहते हैं जी आप इसको देख लें, इट डजंट गिव यू मच इन्फॉर्मेशन बिहाइंड द बेसिक्स के नंबर. वो आते वो जो है उनका एक वो आएगा, वो कहेंगे कि जी अच्छा ये मुआहदा हो गया, अच्छा आएंगे बात करेंगे, ठीक है जी मुआहदा करना है, अच्छा ये है कि हमारा जो है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप आएंगे आप इससे बात करेंगे, ये आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगी. और वो जो डोमेस्टिक है वो पहले से तैयार बैठे होंगे, वो कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है, इस पर कोई वो नहीं होगी कि अच्छा यार ठहर जाए वेट अ मिनट, आप जो ये तजवीज़ लेके आ रहे हैं लेट अस सी के व्हाट आर द ग्राउंड रियलिटीज, डू वी इवन नीड दिस थिंग. नहीं ऐसी कोई बात नहीं. EAD अफसोस की बात, एंड आई एम सॉरी टू से, लेकिन कहना पड़ेगा, साफ कहना पड़ेगा, वो ये है कि हमें EAD की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. EAD के अलावा और बहुत से ऐसे डिवीजन मिनिस्ट्रियां सब कुछ बने जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, देर इज़ नो नीड फॉर इट, ठीक है ना. वो एवेल्यूएशन करते हैं, आपने पूरी EAD सिर्फ इसलिए कायम की हुई है कि डोनर आएगा और आपने उसके साथ दस्तखत करने हैं, दैट इज़ इट.
अच्छा ये बताइए, इसमें एक और जो चीज़ है, अभी एक औरत है लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, उसने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, या शायद UCL में है, मरियाना मज़ुकाटो, उसने किताब एक बड़ी अच्छी लिखी कंसल्टिंग फर्म पे
जी.
उनका क्या रोल है इसमें कंसल्टिंग फर्म, तो माशाल्लाह मैकिन्ज़ी जी हाँ बहुत सक्सेसफुल है, प्राइम मिनिस्टर साहब मैकिन्ज़ी के बड़े शदाई हैं, प्लानिंग मिनिस्टर साहब मैकिन्ज़ी के बड़े शदाई हैं, पूरी दुनिया सोचती है मैकिन्ज़ी माशाल्लाह बहुत काम करती है. मैंने नाम ले लिया फर्म का, शायद नहीं लेना चाहिए था. चलिए और ऐसी बड़ी फर्म्स हैं, एक तो नहीं है वो, TWC भी है अपना, ENY भी है वगैरह वगैरह, और इन फर्म्स की बहुत प्रेजेंस है यहाँ, प्राइस वाटर कूपर्स भी है, बहुत सारी फर्म्स हैं. तो ये ज़्यादातर सुना है इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, हमारी फर्म्स को मिल सकते हैं या सिर्फ इन्हीं को मिल सकते हैं, और हमारी फर्म्स बड़ी क्यों नहीं होती, क्यों नहीं हमारी कंसल्टिंग फर्म बनती जो इनके साथ कम्पीट कर सके.
हमने कोशिश की थी, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مکنزی وغیرہ اور اس طرح کی ڈیلائٹ وغیرہ ان کی بڑی ایک پاورفل پریزنس ہے پاکستان میں,
پوری دنیا میں
اور پاکستان میں بھی ہے. پاکستان میں ڈائریکٹلی اکثر وہ کام نہیں کرتے, وہ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں کسی کو جو کہ ان کے بیاف پہ کام کرتے ہیں,
پر زیادہ پیسے وہ رکھتے ہیں,
وہ سارے پھر وہ جو ہوتے ہیں نیٹ آؤٹ فلو جو ہوتا ہے اس میں وہ چلے جاتے ہیں. کوشش ہم نے کی تھی 70s میں کہ ہم بھی اپنی کنسلٹنگ انڈسٹری بنا لیں. اس میں ہم نے پھر پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل بنائی, پھر اس میں ہم نے نیسپاک بنائے, پھر اس میں اور ادارے بنائے, لیکن اس کا پھر ہوا یہی کہ وہ تو وہیں پہ رہ گئے, وہ ساری کنسلٹنسی بھی ان کی وہیں پہ رہے گی, لیکن وہ ادارے قائم ہیں اور اس کا ٹیکس پیئر سے آپ کو اس کو فائنینس کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, نیسپاک ہے مثال کے طور پہ, ان کے ٹھیکے آپ دیکھیں وہ پاکستان سے لمیٹڈ, پاکستان سے باہر. سمپل فیکٹ از ڈاکٹر صاحب کہ دے کین ناٹ کمپیٹ. ٹھیک ہے, آپ نے ان کو ایکسپوز ہی نہیں کیا ٹو کمپٹیشن. میں نے آپ کو واپڈا کی مثال دی نا, وی شوڈ
ایبل. ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں فرمس نہیں ہیں کیا؟ پرائیویٹ سیکٹر والے فرم بھی نہیں کمپیٹ کر سکتے کیا؟ ان کو ان 8 contracts میں کیا ایکول اپرچونیٹی ملتی ہے کام کرنے کی, یا کہ وہ اپنے فرمس کو دیتے ہیں؟
میں یہ کہوں گا کہ لاٹ آف دیم لائک پبلک سیکٹر آر فری رائڈرز. میں یہ کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ یار بس آسان ہے نا کہ پیسے آ رہے ہیں, محنت نہیں کرنی پڑتی, دے ناٹ کمپیٹنگ. آپ اکثر ایک اصلاح استعمال کرتے ہیں اس میں, ایک سیٹ فرمز. پاکستان کی زیادہ تر فرمز جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ سیٹ فرمز ہیں. ٹھیک ہے, وہ سیٹ ہے, وہ ایٹ انٹرنیشنل لیول وہ کہتے ہیں نہیں, وہ جا کے گورنمنٹ کے پاس آتے ہیں کہ یار بہتر یہ ہے کہ جا کے لابی کر لو ایک وزیر کے پاس, وزیر اعظم سے ملاقات کر لو, انہیں کہو کہ یار ہمیں پروٹیکشن دے دیں تاکہ ہم وہ نہ کر سکیں. کار انڈسٹری آپ کے سامنے, ٹھیک ہے جی, تو وہ دے آر میکنگ وہ 3 ڈبے بنا کے 40-40 lakh روپے کے بیچ رہے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی ایکسیپٹ فار اے ویری لمیٹڈ نمبر آف فرم پرسنٹیج, زیادہ تر پاکستان کی جو فرمز ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں کنسلٹنسی فرمز ہیں, دے جسٹ فیڈ آف آف دا منی کمنگ فرام آؤٹ سائڈ. ان کے لیے اپنی سروسز یا اپنے انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کرنا, ان میں وہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا ان نیٹ ڈرائیو, وہ نہیں ہے. ایک انسینٹیو نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور دوسرا ان کے اپنے اندر بھی کوئی وہ ایک ان نیٹ ڈرائیو ہوتی ہے کہ یار لیٹ می کمپیٹ, لیٹ می گو آؤٹ سائڈ آف پاکستان, وہ بھی نہیں ہے. سو دیز بوتھ کمبائن کے اس سے یہ ہوتا ہے, آخر میں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی ایک چھوٹی سی اسمال سی فرمز ہے جو کہ یہاں پہ پاکستان میں ٹھیکے پہ آتی ہے.
لیٹ می سمرائز جو آپ کہہ رہے ہیں اور اس پہ آپ آخری کامنٹ دیں کہ ہم پیسے لے لیتے ہیں بھیک مانگ کے, ہمیں پتہ نہیں کہ بیشتر پیسے جو آتے ہیں لون پہ آتے ہیں, پھر لون کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کیسے استعمال ہو رہے ہیں, ان کے کنسلٹنٹس آ جاتے ہیں اور وہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں
جی.
دوسری چیز ان کی کمپیٹنس کا بھی پتہ نہیں ہوتا, اور پھر جب وہ ریکمنڈیشن دیتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ان کے مفاد کی ہوتی ہیں, پھر چیزیں جو خریدنی ہوتی وہ انہیں کی طرف سے آتی ہیں, ہمارے طرف سے نہیں آتی, بلکہ اس کے اندر کئی دفعہ قزغنیں لگی ہوتی ہیں کہ وہیں سے لے سکتے یہاں سے نہیں لے سکتے. جیسے بھی ریسنٹلی مجھے یاد ہے یوکرین کے بارے میں ایک کانگریس میں اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ بھائی جان اگر ہم یوکرین کو پیسے دے رہے ہیں تو یہ نہ سوچیں یوکرین کو دے رہے ہیں,
جی جی
پیسے واپس آ رہے ہیں, یہ ہماری انڈسٹری سے وہاں پیسے جائیں گے تو فائدہ ہماری انڈسٹری کا ان کا نہیں ہے. تیسری ایک اور بھی چیز ہے کہ پروجیکٹس آتے ہیں, پروجیکٹس کے اندر جو ہوتا ہے ڈیزائن بھی ان کا ہوتا ہے
جی,
امپلیمنٹیشن بھی ان کی ہوتی ہے ہماری نہیں ہوتی. ایک اور بھی چیز ہے جو بڑی عجیب ہے کہ یہ آپس میں بھی مل کے کام کرتے ہیں, ورلڈ بینک, UNDP, ADB, ورلڈ بینک آپس میں مل کے کام کرتے ہیں, ہمارے اداروں کے ساتھ کم کام کرتے ہیں, پر اینڈ میں جو پیسے ہیں وہ تو ہمیں ہی واپس کرنے ہیں
جی,
کچھ بھی کر لیں پیسے تو ہمیں ہی واپس کرنے ہیں, اور ہم میں نہ صلاحیت ہے اس کو ایویلیویٹ کرنے کی, سمجھنے کی, نہ ہم میں وہ انسینٹیو سسٹم ہے. ہمارے کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ جو ہمارے لینے والے لوگ ہیں ان میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, وہ سیرے بھی کرنا چاہتے ہیں, کنسلٹنگ بھی کرنا چاہتے ہیں, باقی بھی ان کے بڑے فائدے ہیں اس میں سے, تو یہ تو بہت بڑا مشکل پرابلم ہے. اس میں سے ہم نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے, پھنس گئے ہیں اس میں؟
میں تو یہ کہوں گا ڈاکٹر صاحب, جو ہمارا رویہ ہے خاص طور پہ ہماری بیوروکریسی میں چلے پاور ہالس کا, پولیٹیشنس وغیرہ ہے پھر اسٹیبلشمنٹ کا, اس میں سے آپ فورگیٹ کہ آپ اس چیز سے نکل سکتے ہیں. آج وی آر انڈر 128-129 billion جو فورن ڈیٹ, ان دا نیکسٹ 10 years اٹ وڈ بی کمفرٹیبلی بی اراؤنڈ 140-145 billion. اس کے لیے آپ کو سوچ چاہیے, اس کے لیے آپ کو خود اپنی صلاحیت چاہیے, اس پہ اعتماد چاہیے کہ یار میری بھی کوئی صلاحیت ہے, میں کچھ کر سکتا ہوں اور میں نے کچھ کرنے دینا ہے. پھر دوسری چیز جو اس میں ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہم نے سوال اٹھانے اور سوال کے ہمیں جواب چاہیے, نہ ہمیں سوال کے جواب ملتے ہیں, نہ ہم سے کوئی اگر آپ मैंने मिसाल दी ईएडी चले जाएं, किसी और इदारे चले जाएं, वो आपको कुछ नहीं देंगे ना। हम इस प्रोसेस का हिस्सा हैं कि ये आखिरकार क्यों, किस तरह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लोन्स किस लिए इस्तेमाल होंगे, क्या इनकी वायबिलिटी क्या है, और इसको फिर आखिर में इनका हमने कैसे पता लगाना है कि ये अच्छे हैं, ठीक है, इनकी वजह से कुछ हुआ नहीं हुआ। ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी, जब तक हम सवाल नहीं कर सकते, जब तक हम अपने ऊपर वो नहीं करते, इनसार नहीं करते कि यार हमारे लोग ही ये काम कर सकते हैं, नथिंग वुड हैपन। आप इस चीज़ को भूल जाएं। आज मैंने कहा ना 128 बिलियन है, 5-10 साल में जो आप देखिएगा 140-145।
आपने जो फिक्र दी 128 बिलियन, उससे मुझे फौरन ख्याल आया कि हमारे रिजर्व तो 8 बिलियन है, तो अगर हम 128 को 8 से डिवाइड करें तो मेरा ख्याल है ये कितना आ जाता, तकरीबन 16 गुना आ जाता है
जी।
मैं अभी इंडिया का देख रहा था, इंडिया का फॉरेन डेट जो है वो 653 बिलियन है, इंडिया का जो रिजर्व्स हैं वो 600 बिलियन है
जी।
तो इंडिया का जो फॉरेन डेट है वो उनके रिजर्व्स के बराबर है
जी।
हमारा जो फॉरेन डेट है वो हमारे रिजर्व से 16 गुना ज़्यादा है
जी जी।
अब आप मुझे बताइए क्या इंडिया क्यों नहीं ऐसे फंसा, हम क्यों फंसे?
इंडिया इसलिए नहीं फंसा क्योंकि एक तो हमारे सामने उनकी मिसाल है, एंड वी हैड देम ऑन आवर पॉडकास्ट सॉरी वेबिनार, डॉक्टर मॉन्टेक सिंह और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी मेच्योरिटी देखें कि उन्होंने जो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने आखिर में उनको कन्विंस किया कि यार यू रियली आर एट अ क्रॉस रोड, या तो इंडिया जाएगा या फिर हम सुधर जाएंगे। और फिर उन्होंने मिल के सबके साथ बैठे, वाजपेयी साहब के साथ बैठे, जो गवर्नमेंट थी उस वक्त नरसिम्हा राव साहब की, उनके साथ बैठे, सबके साथ बैठे, उनको समझाया कि यार देखें आपने आपस में जो करना है ना करें, ठीक है, बट अब इस चीज़ से छोड़ दें, ये जिस तरीके से आप चल रहे थे इसको आप ख़त्म करें, आपस में आपने जो करना करना है। सो गुड फॉर देम कि आखिर में उन्होंने रियलाइज़ किया कि जिस तरीके से हम जा रहे हैं दिस इज़ नॉट राइट, एंड लेट द इकोनॉमिस्ट, लेट द प्रोफेशनल पीपल डू देयर वर्क, एंड लेट अस डू आवर पॉलिटिक्स, ठीक है सर। पाकिस्तान में जैसा कि अभी आपने एक बड़ी मजे की मिसाल दी, पाकिस्तान में हर बंदा इकोनॉमिस्ट है। आप टीवी एंकर्स को देख लें, जब वो बातें कर रहे होते तो आप कहेंगे कि यार इससे बड़ा तो शायद कोई इकोनॉमिस्ट है नहीं, ठीक है। फिर पॉलिटिशियंस को देख लें, फिर एस्टैब्लिशमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें, इनमें से किसी को थोड़ा सा भी इतराक नहीं है कि यार वी आर हेडिंग टूवर्ड्स वेरी बिग डिज़ास्टर, क्योंकि हम लोग आदी हुए हैं कि हमें बाहर से पैसे आ जाएंगे, किसी तरह हम बच जाएंगे, एंड वी लिव अनदर डे। तो आई डोंट नो व्हाट वुड इट टेक, वुड इट टेक अ डिज़ास्टर, मेजर डिज़ास्टर वुड इट बी कि जी हम वी फॉल ऑफ द ब्रिंक और वट एवर। लेकिन जो मुझे अनफॉर्चुनेटली, मैं दोबारा ये कहूँगा कि मुझे कहीं भी थोड़ा सा भी ये नहीं नज़र आता पावर सर्कल्स में कि यार वी नीड टू चेंज द कोर्स, वो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। So, as far as I'm concerned, मैं ये कहूँगा कि सर आगे कोई फ्यूचर कोई मुझे इतना चल।
शाह साहब थैंक यू वेरी मच, इस पर बात बहुत काम और करने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह पाई आपकी सरबराही में एक सेल हमने बना दिया है, तो एड के सेल में अब हम इस पर ज़रा गहरी नज़र रखेंगे और सोचेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी बात कह दूँ कि मोंटे कालूवालिया से जब मैंने पूछा एक दफ़ा लॉन्ग टाइम अगो, मजाक में ही पूछा, मैंने कहा मोंटे साहब, ये डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, मैंने कहा अगर आपके दफ्तर में कोई वर्ल्ड बैंक या कोई ऐसे लेंडर का या कोई ऐसे भारी भरकम आदमी आ जाए तो आप कितनी देर लगाएंगे उससे मिलने में? उसने हैरान होकर पूछा मेरे पास क्यों आएगा, पहले मेरे कोई वो जॉइंट सेक्रेटरी के पास तो जाए, वो मुझे बताएगा तो मैं आऊँगा, मैं क्या कहते हैं मिलूँगा उससे, वरना मैं क्यों मिलूँ। फिर उससे मैंने एक दफ़ा और सवाल पूछा, मैंने कहा जी आप बताइए कि वो जो IMF का रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव है उसको तो आप घर माने नहीं देते वहाँ कमरे में? वो कहता बिल्कुल नहीं, मैं क्यों आने दूँ? मैंने कहा यार मुझे ही IMF का रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव लगा लो, मैं पाकिस्तानी हूँ, बड़ा फ़ायदा होगा। तो उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूँगा, सारा दिन गोल्फ खेलूँगा, याशी करूँगा, इंडिया भी सैर करूँगा। तो खैर ये मजाक में बात हो रही थी, बट इट्स एक्चुअली करेक्ट, वहाँ वो अपने इकोनॉमी से बहुत रिलाय करते
जी,
अपनी तहकीक पर बहुत रिलाय करते, ये शुरू दिन से है। शायद इस वजह से है क्योंकि नेहरू एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल था
जी,
शायद इस वजह से है कि उनके सारे लीडरान माशाल्लाह बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, और उनमें एक कॉन्फिडेंस है, उनमें एक है गरूर, हमारी तरह नहीं है, वो बिछते नहीं है। मुझे भी याद है कि गुलफंत सिंह ने एक दफ़ा पाकिस्तान से चला यहाँ से अपने प्राइवेट जहाज़ में, इंडिया के ऊपर से फ्लाई करने की कोशिश की, इंडिया ने जहाज़ रोक लिया उसका, रात का वक्त था, गुलफंत सिंह ने बड़ा शोर मचाया, बैंक का प्रेसिडेंट था
जी,
कि भाई मेरा जहाज़ है मुझे छोड़ो। उन्होंने कहा ना, उसने कहा फ़ोन कर दो मनमोहन सिंह को, उन्होंने कहा नहीं फ़ोन नहीं हम कर सकते, सुबह जागेंगे तो बात होगी। सारी रात बिठाया और सुबह 9 बजे जब वो जागा फिर परमिशन दे के हो गया। उनमें एक है, उसको क्या कहते हैं, जो भी कोई है चीज है ना, उनमें एक है, हम में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। खैर ये एक और वक्त बात होगी। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, कंटिन्यू करें, अपना सेल बनाएं और इंशाल्लाह इस कॉम को समझाएं कि ये एड की जब हेडलाइन लगती है एड नहीं होती, ये कर्ज होता है। बहुत शुक्रिया,
थैंक यू।
थैंक यू फॉर लिसनिंग। यू कैन वॉच आवर पॉडकास्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल भाईड ऑफिशियल।